विशाल देती हैं, आप समझेंगे। आपके अपने स्कूलों में भी कभी ऐसा हुआ होगा यकीनन, या किसी मदरसे में, और आप अगर आप खुद भी इसी से हैं तो कई दफा तो आप खुद भी ये देखते होंगे, कोई मदरसा या इंस्टीट्यूट आपको दावत देता है जी आप आइए मेहमाने खसूसी बन के, और हमारी बच्चियों को सर्टिफिकेट्स दीजिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को गिफ्ट देने हैं, ठीक है जी, और साथ दर्स भी कीजिए और दुआ भी करवा दें, दो चार चीज़ें मिला दी। अब बाकी इधर उधर की चीज़ें छोड़ दें, लेकिन वो जब गिफ्ट देने का मौका आएगा, क्या आपकी चॉइस होती है किसको गिफ्ट दे दें किसको नहीं? अमूमन सात टेबल पे सब चीज़ें रखी होती हैं, नाम तक लिखे होते हैं, और जो स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूट है ना, उसका एक नुमाइंदा आकर अनाउंस कर रहा होता है, बोला आ जाएं जी, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। हाँ, मेहमान खुसूसी का कितना काम है, वो जो बॉक्स उसको देंगे ना, ये इनको दे दें जी, सलाम कर लें प्यार करके उसको दे दें ये दूसरे को, क्या उस मौके पे वो जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो चेंज कर सकता है? उसको तो पता भी नहीं, दैट इज सिफारिश। अब यहाँ बड़ा कोड वर्ड एक जो दिया था पहला, अब इसके बाद ये दूसरा लिख लें, पहला क्या दिया था, सिफारिश, सिफारिश है, हुक्म नहीं है। अब दूसरा लिखिए, फैसला अल्लाह का है, उसमें कोई तब्दीली नहीं, लेकिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को, किन को, वो भी हम लिस्ट देखते हैं, इज्जत देगा। जैसे किसी गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाकर इज्जत दी जाती है ना, आप अपने हाथों से बच्चों को सर्टिफिकेट्स दें, अल्लाह ताला ये काम अंबिया कराम से, शोहदा से, और जिससे वो चाहेगा वो करवाएगा। और क्यों कराएगा, बड़ी हसास बात कहने वाली हूँ, अगर आप भी अल्लाह के रास्ते के राही और दाई दीन है ना, आपका दिल चाहता है कि दुनिया में कुरान का नूर फैले, तो ये आसान काम नहीं है। क्यों अल्लाह ये हक देगा, तो उसकी वजह लिखिए, दुनिया में सबसे ऊंचे मुकाम वाले लोग रसूल और अंबिया कराम थे, चुने हुए लोग। वमन युति अल्लाह व रसूल फौलाइक मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा और फिर सालिहीन, और अल्लाह कहते हैं कि ये बड़े बेहतरीन साथी है, हसुना रफीका। अब होता क्या है कि अंबिया कराम जो टॉप मोस्ट इलीट सोसाइटी होती है किसी सोसाइटी की, आज तो नबूवत है नहीं ना, हमने तो सिर्फ नबी सल्लम की जिंदगी देखी, मक्की दौर याद है मदनी याद है, कसस अंबिया कुरान से पढ़ लिए, एक कॉमन थिंग लिख लें। और अगर आज आप खुद भी इस रास्ते पे ना, तो जरा जाकर रिलेट कीजिएगा, और वो क्या है कि रसूल और अंबिया को दुनिया में उनका खातर ख्वाह हक नहीं मिला। वो कहते ना, किसी गम गुसार की मेहनतों का मैंने क्या ये सिला दिया, जो मेरे गम में रातों को रोया मैंने उसको बुला दिया। अपने नबी को सोचे ना जेन में, मक्का मदीना हिजरतें, 500 मील का फासला पैदल, ताइफ जा रहे हैं पैदल, पत्थर खाए जा रहे हैं, फिर जंगों में है, पत्थर पेट पे बांधे हुए हैं, खंदकें खुद रही, ये ऐसे कंफर्ट जोन वाला दीन है ही नहीं, नहीं है। आज हम बहुत रिलैक्स्ड हो गए, नेकी भी वो करते हैं जो हमें सूट करती हो। साहबा ने तो कभी नहीं कहा था ये मुझे नहीं सूट करता कि मैं आप बदर में जाके लड़ूं, उनका तो मुकाबला क्या होता था कि मैं जाऊंगा, और जो रह गए थे वो घर में अफसोस करते थे कि हम कैसे रह गए, पहली जंग आई है उसी में नहीं, आप कोई मौका आया तो अल्लाह भी देख लेगा कि हम क्या करते हैं। आज जिंदगी इतनी आसाइशों का सामान बन गया हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चे नहीं उठते फजर पे, नहीं जो उठता वो जंग के लिए कहाँ जाएगा, घर मेहमान आ जाए कौन उठ के जाता है, काम कौन करता है, या अब्बा या अम्मा। आज तो बच्चों को हक ही नहीं मेरे हाले रह गया इस बात का कि वो भी जरा चार लफ्ज बैठकर बोल लें, उनको कंपनी दे दे, क्योंकि हर एक बिजी है, बिजी बिजी बिजी, लुक बिजी डू नथिंग, शोर ज्यादा है पढ़ाई का एजुकेशन का, सर पे सवार किया हुआ है जॉब को, जवानी की आ जाती है माँ बाप और बच्चों में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जबकि ये रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है। मुस्तकिल, जो हदे मुस्तकिल। और मैं यहाँ तहदी से नेमत के लिए कहूँगी, बहुत ही आज मेरे लिए एक इमोशनल डे है कि पीके ट्रिप 24 जो कराची से शुरू हुआ था, डेट किसी को याद है तो बोल दें, दिसंबर 5 को पाकिस्तान में हम आए थे और आज 22 है। पहला लेक्चर भी कराची से ही था और आज आखिरी भी इधर है। पहला भी आते ही उसी दिन किया और आज भी देखिए अभी जहाज से बस निकल के तो सीधे होके आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। गवा रहिएगा, ये 5 से 22 तक का जाके आप वेबसाइट से डे टू डे कैलेंडर देख लें। इससे पीछे सऊदीया का भी अभी डला हुआ है, यूएई, दुबई और अबू धाबी के भी लेक्चर उसमें हैं। एक ही काम है, एक ही काम है। खानदान भी हैं, बिरादरियां भी हैं, प्यारे भी हैं, डांटने वाले भी हैं, हमारा इंतजार करने वाले भी हैं। किसको अच्छा नहीं लगता, और सब चलता है। लेकिन ये कहना नहीं, अब मुझे अब जरा 2 माह की छुट्टी दे दो जरा, ये नहीं होगा। ये ऑक्सीजन मुस्तकिल नहीं ले रहे, जब से यहाँ बैठे कितनी दफा अपने पलकें झपकी हैं। आपकी बॉडी में ब्लड रोटेट करता रहता है, आप सोते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं हम थक गए हैं? हो सकता है आज आप में से कुछ लोगों को मुश्किल लगा हो, इतनी जल्दी आ गई है। साल बाद आए तो मजा आता है, 2 साल बाद आए तो बहुत ही बेताबियां होती हैं। अब ये 15 दिन बाद दोबारा फिर कराची आ गए, अब कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम रूट बदल लेंगे। लेकिन हर जगह रोता ही छोड़ के आगे निकल गए। एक एक ही लेक्चर हुआ, घंटों के अतबार से एक एक शहर में बस रहे। बड़ी खुशी की बात थी जहां रात रह लिया, तो क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। उम्मत का हाल तो देखिए जरा, इंसानों के अकायद तो देखिए। रास्ते में पूरा वक्त, अभी हम लाहौर से आए हैं, सुबह फजर एयरपोर्ट पे पड़ी माशाल्लाह, और बस पड़ते ही जहाज में बैठे और इधर आ गए। तो अमूमन रास्तों में बहुत बातें हम करते हैं ना, लेकिन ये पाकिस्तान और यूएई की फ्लाइट्स में मोस्टली ये सीन नहीं दिखा मुझे ना, क्योंकि ज्यादा उर्दू वाले होते हैं या अपने हाल में होते हैं। तो लेकिन आज हमारे साथ तीसरी जो सीट थी उस पर एक लड़का था यंग ना फ्रंट पे, तो मैंने शुक्र किया कि मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। तो सर थे बीच में, वो भी इंग्लिश बोल रहा है, ये भी इंग्लिश बोल, और मेरे कानों में बातें आ रही हैं, एथियज्म पे बातें हो रही, ला खुदाइयत, अल्लाह को नहीं मानना। वो भी बच्चे इनसे सवाल कर रहा था, मुझे ऐसे लगा मैं यूरोप की किसी फ्लाइट में बैठ गई हूँ ना, क्योंकि अमूमन इंग्लिश वही बोली जाती है और दावा पूरा पूरा वक्त होती है, पूरा घंटा। उसमें से मेरा लगता 40-50 मिनट सिर्फ, बल्कि इससे भी ज्यादा यही बातें ही करते रहे। और वो सवाल पूछ रहा था, यहाँ आपके मुल्क में लोग कह रहे हैं अल्लाह नहीं है, डज गॉड एग्जिस्ट? शिर्क देख लीजिए, बिदात देख लीजिए। आप जो कुरान पढ़ के जाते हैं, क्या घर जाके आपको फूलों के हार पहनाए जाते हैं? खानदान वाले, बिरादरी वाले आपको मुबारकें देते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया? ताने देंगे, संडे था निकल गई, ये क्या बात है भाई, अब आज आते ही निकल गई, ये क्या जी, ये दर्स देने दिलाने ये क्या काम हो गए? लोग तो अभी आपको ही अजनबी समझेंगे, और अंधेरों का क्या रोना फिर, कैसे इस उम्मत की हालत बदलेगी, कैसे बदलेगी? और अल्लाह को गवाह बनाकर आपको बता रही हूँ, और आपको ज्यादा नहीं बताना चाहिए, बाहर वालों को जाके बताऊंगी कि 15 दिन 5 से 22 किसी गली, बाजार, दुकान, शॉपिंग सेंटर, ग्रोसरी स्टोर, कोई क्रीम, कोई धागा मुंह नहीं देखा, और अल्लाह जानता है। ये यानी लोग पाकिस्तान आते हैं ना शॉपिंग करने आते हैं, कोई जा रहे होता है ना तो लोगों को देखे शॉपिंग करेंगे, टाइम ही नहीं मिला और कोई तैयारी है ना, जरूरत पड़ी ना ख्याल आया, और अल्लाह ने हर चीज जो है आप सबसे ज्यादा दी हुई। अभी बात कर रही हूँ तो मुझे ख्याल आ रहा है, ख्याल भी नहीं आया क्योंकि दिमाग में आई ही नहीं। और अगर आप जरा सा इसको एक दफा जाके तो देखें बाजार, फिर हाल टपकेगी। और अगर कभी कहीं गुजरे भी, जाएंगे भी, तो वो अल्लाह की रहमत से आपके किसी स्कूल के ही काम के लिए जाएंगे। अल्लाह कैसे बंदे की जरूरतें पूरी कर देता है ना। लेकिन आज हम क्या चाहते हैं, इधर भी हमारी मर्जी उधर भी हमारी मर्जी, यहां भी अल्लाह हमारी माने और वहां भी अल्लाह हमारी माने। हम यहां भी अपनी मर्जियां करें, वहां भी अपनी मर्जियां करें, तो मौजे ही मौजे। और मौजे कोई नहीं है, आप लाखों से अच्छे हैं। इस दीन की जिदोजहद ने आपको जिन फितनों से, बीमारियों से, आजमाइशों से, सदमों से बचाया हुआ है, आपको इसका पूरा अंदाजा नहीं है। अभी लोग इसको छोड़कर खुश नहीं रहते, करोड़ों की जायदाद है, खुशी कोई नहीं, औलाद है, गम लगे हुए, मोहब्बतें नहीं है दिलों में। वो वजह क्या है कि लोग नफसी नफसी पे पड़े हैं। तो अल्लाह सुबहाना ताला कुछ को खुद छोड़ देगा, नबियों को इज्जत दिलाएगा कि तुम्हारी इज्जत नहीं हुई इतनी, ए नूह तुझे तो डांटा गया था कुरान में। अल्लाह ताला सूरह कमर में हजरत नूह के बारे में क्या कहते हैं कि मेरा वो नूह जिसको डांट पड़ती थी, लोग उनको देखकर मुंह पे हाथ रख लेते थे, कानों में उंगलियां डाल लेते थे, कहते थे तेरी शक्ल नहीं देखनी, तेरी बात नहीं सुननी, यहाँ बैठकर मेरे साथ कोई ऐसा मामला करे तो मुझे कैसा दुख होगा कि क्या हमें दर्द सुनाने आ गई है, जाए यहाँ से। मुंह फेर लेते, वासरु वस्तकबरु इस्तिकबारा। तो जब नूह की इतनी ना कदरी हुई तो सिफारिश क्या है, अल्लाह हजरत नूह को इज्जत देंगे, जैसे वो मदरसे वाले गेस्ट ऑफ ऑनर बनाते हैं ना, अल्लाह नबियों को बनाएगा। फैसला अल्लाह का है। अब यहाँ बड़ा कोड वर्ड लिख लीजिए, दुनिया में फैसले बाद में होते, सिफारिश पहले आती है। अगर बिलफर्ज फैसला सुनाने के बाद किसी जज के पास कोई सिफारिश पहुंचे तो क्या कहेगा, सॉरी इट्स लेट, इट्स डन, ये तो कह दिया आपने, कह दिया। हाँ अभी मुकदमा चल रहा था, किसी वजीर मशीर की सिफारिश आ गई, मे भी फैसला बदल दें, ये तो सबको पता है ना। आखिरत में इसका उलट है, दुनिया में क्या है दोहराइए, फैसले बाद में सिफारिश पहले। अल्लाह के पास आखिरत में क्या होने वाला है, फैसला पहले कि किसको बख्शना है किसको नहीं बख्शना, और सिफारिश बाद में करा लेगा। जैसे कि अभी आपको एक मिसाल अच्छी भी दी है कि भाई लोग किसी को बुला के गिफ्ट दिलवा देते हैं, इसी तरह से आप देखिए कहीं कहीं अल्लाह डराएगा भी, सिर्फ कुछ लोगों को सिर्फ धमकी देनी है, डरावा, चलो इनको मैं आग में डालता हूँ, अब इसको एंजॉय करिएगा आप, जरा मेरे साथ रहें। कुछ लोगों को अल्लाह ताला सिर्फ डरावा देगा, चलो फरिश्ते इसको आग में डाल दो, साथ ही किसी नबी को कह देगा जाओ तुम इसको, मुझे कह देना इसको बचा लो, मैं बचा दूंगा। घरों में कभी हुआ, मियाँ बीवी की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बच्चा जरा स्पार्क पुर्जे निकाल रहा है, जरा जवानी का नशा। अब बाप कहता है कि अगर ये इसी तरह रहा तो ये तो पता नहीं कितना बिगड़ जाएगा। तो मियाँ बीवी ना एक प्लान कर लेते हैं, बाप कहता है मैं इसको डांटूंगा, धमकी दूंगा, और जो ही मैं इसकी तरफ जाऊं ना तुम बीच में आके इसको छुड़ा लेना, ये प्री प्लान्ड है। अब बाप है गुस्से में, बाप बेटे को कहता है पकड़ो इसको, निकाल दो इधर, ये इसको इधर आओ, इधर क्या है। तो बीच में बीवी आती, नहीं 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 आइंदा नहीं करेगा, बेटा कह दो अब्बू को मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अच्छा तुम कह रही हो, चलो माफी देता हूँ। फैसला पीछे क्या था, पहले से गठजोड़ थी। और अगर बिलफर्ज कभी इसका ऑपोजिट हो, बाप वाकई गुस्से में आ जाए, बच्चे पे गुस्सा आ गया, तो अब बीवी या बच्चे की माँ बीच में आए तो सकते उसको भी डांट पड़ जाए कि तुम बीच में नहीं आना, बोलना नहीं। तो इन दो मिसालों से समझिए, फैसला अल्लाह ने पहले करना है। हाँ फैसला कर लिया, इनको मैंने बचाना है, किसी को नबी के जरिए बचा देगा, चलो मूसा आप जाके इसकी सिफारिश कर दें, चले आप जाकर किसी शहीद को कहेगा जाके इसके, अच्छा तुम कह रहे हो जाओ तुम्हारे कहने पे छोड़ देता हूँ। अल्लाह, लोगों ने किसी के घर पैगाम दिलवाना होता है ना, रिश्ता डालते हैं जिसको कहते हैं, खुद नहीं डालते, क्यों भला ना हो जाएगी, हमें तो अम्मा को भेजते हैं, अम्मा आप जाकर रिश्ता मांगिए, क्यों बोला? अब अम्मा को कौन ना करे, बस ये फर्क है। तो बात वाजह हो गई कि अल्लाह सुबहान ताला चंद लोगों को सिफारिश करने का मौका देंगे और फिर उनकी सिफारिश कबूल करके उनको माफ कर देंगे। पांचवी बात लिख लीजिए, तरतीब जो भी आप बना रहे हैं, कि सिफारिश करेगा वही जिसको इजाजत होगी, यानी जिनको सिफारिश करने की इजाजत होगी सिर्फ वही सिफारिश करेंगे, खुद से उठ के जाके कोई नहीं कर सकता, लो मैं कह के आऊं, नहीं। और जिनके हक में करेंगे उन्हीं की होगी, वरना नहीं। अल्लाह मौका बना देगा अपने बंदों को बख्शने का, और जो सिफारिश करें मैदाने हशर में उनकी इज्जत बढ़ रही है, देखो इनका कितने तरह इनके कहने पे ये काम कर दिया। और अगली बात नोट कीजिए, सिफारिश की मुख्तलिफ किस्मों में सबसे बड़ा मौका क्यामत के मैदान में सिफारिश करने का वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। इसीलिए आपको मकामे महमूद और दरजतुर रफिया करार दिए, जो हम पढ़ते हैं ना अजान के बाद की दुआ, अल्लाह ताला वब असु मकाम महमूदा। अब ये मकामे महमूद कोई जगह, कहाँ खड़े हो जाएंगे आप, ये ऑनर है किस चीज का, सिफारिश का। जो भी शुरू में हदीस सुनी है ना, दो सिफारिशें होंगी, ये भी एक जुमला लिखी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, क्यामत के दिन दो सिफारिशें हैं, एक सिफारिश जो भी हमने हदीस सुनी शुरू में, हिसाब शुरू हो, इस सब के लिए है नबी की, पूरी इंसानियत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफारिश फायदा दे देगी कि आपके कहने पे हिसाब शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरी सिफारिश है कि आप इनको जहन्नम में नहीं जन्नत में भेज जी। लेकिन ये याद रखिएगा कि सिफारिश की इजाजत मिलना और बात है, लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि वो सिफारिश करके अल्लाह का कोई फैसला बदल देंगे, बल्कि वो अल्लाह ही के फैसले पे अमल करेंगे और उन्हीं की सिफारिश करेंगे जिनकी अल्लाह इजाजत देगा। इतनी बात क्लियर है? कोई सवाल है इसमें से? आगे मैं आपको चंद आयतों के नंबर लिखाने वाली हूँ तरतीब के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई शिफात नहीं कर सकता। ये है गड़बड़ का नुक्ता, जहाँ हमारे कल्चर में अमूमन बहुत गलत फहमी है जी, फलां बाबा जी फलां की वजह से, फलां करेंगे तो होगा वो होगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई नहीं कर सकता। चंद आयतें नोट करिए, जिन सब का मेन थीम क्या है, क्यामत के रोज कोई शख्स किसी दूसरे के काम ना आएगा और न अल्लाह की इजाजत के बगैर शिफात कर सकेगा। पहली आयत है सूरत अल-अनाम 70, वज़क्किर बिही अन्तुबसल नफ्सुम बिमा कसबत लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलियुम वला शफी वइन तअदिल कुल्ल अदलिन ला युख़्ज़ मिन्हा। और इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो ताकि कहीं कोई शख्स अपने करतूतों की पाداش में इस तरह न फंस जाए कि इसे अल्लाह से बचाने वाला कोई हामी और नासिर और सिफारशी मौजूद ना हो, और ये कैफियत हो जाए कि अगर वो दुनिया भर का फिदिया देकर छूटना चाहे तो वो भी कबूल ना किया जाए। आज क्यों ना कुरान के जरिए नसीहत की जाए, ये सदी कुरान की सदी है। आज के लीट लोग वो हैं, आज के दौर के खुशबख्त लोग वो हैं, चोजन पीपल वो हैं, मुंतखब किए हुए लोग वो हैं जो कुरान को फैला रहे हैं। Enlighten the hearts with the noor of Al Quran. दुआ करें अल्लाह हमारी नस्लों को इसमें ही खपा दे। हमारा सबसे बड़ा जिहाद आज के दौर में क्या है, अंधेरों से लड़ने की बजाय थोड़ी मेहनत कीजिए, चिराग से चिराग जलाइए। आपका कराची कितना बड़ा है, एक कोने से दूसरे में जाने में शायद सुबह से रात हो जाए, फिर भी ना पूरा पहुंचे। जो जिस इलाके में है वो वहां से कोर्स करे सबीलुल जन्ना सबीलुल खुदा, फिर उसके नूरुल नूर करे और अपने इलाके में कुरान के नूर से फायदा उठाइए। लोगों को इधर उधर कलम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी रोशनी बाकी रहेगी। आज मरे के कल दूसरा दिन होगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं इस कुरान के जरिए से नसीहत करो, वरना लोग अपनी बुराइयों की वजह से खुद ही मारे जाएंगे। अगली आयत लीजिए, सूरह बकरा 254। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बय्युन फीही वला खुल्लतुम वला शफ़ातुम वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून। ए लोगों, जो ईमान लाए हो, हमने जो रिस्क तुम्हें दिया है इसे अल्लाह की राह में खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें कोई खरीदो फरोख्त, दोस्ती और सिफारिश काम नहीं आएगी, और काफिर तो है ही जालिम। किसी को पता है इस आयत से अगली आयत क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम 255 बकरा आयतुल कुर्सी है। तो इस आयत में भी आपने देख लिया कि सिफारिश की बात हो गई, क़यामत के दिन कोई सिफारिश काम नहीं आनी, मेहनत आज कर लो। तीसरा मुकाम है सूरह बकरा 123। वत्तकु यौम ला तज्जी नफ्सुन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिन्हा अदलुम वला तन्फ़उहा शफ़ातुम वला हुम युनसरून। और डरो इस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा और ना किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा और ना ही सिफारिश किसी को फायदा देगी और ना ही वो मदद किए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट सूरह मुद्दसिर 48। फमा तनफाउहुम शफाअतु शाफीन। मुशरिकों को किसी सिफारशी की सिफारिश क़यामत के दिन फायदा ना देगी। फिफ्थ पॉइंट है सूरह इन्फितार 19। यौम ला तमलिकु नफ्सुल लि नफ्सिन शैया वलम्रु यौम इज़िल लिल्लाह। इस रोज़ कोई नफ्स किसी दूसरे के लिए कुछ न कर सकेगा और फैसले का इख्तियार उस रोज़ सिर्फ अल्लाह के हाथ में होगा। और सिक्स पॉइंट आयतुल कुर्सी 255 बकरा, उसके अंदर एक जुमला क्या है? आपको तो टोटल 10 जुमले हैं आयतुल कुर्सी में, तीन सूरतों के बराबर एक आयत है। बीच का एक जुमला, मन ज़ल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे? सेवेंथ पॉइंट लीजिए यूनुस 3। मा मिन शफीन इल्ला मिन बादी इज़्निही। कोई सिफारिश करने वाला नहीं इल्ला ये कि इसकी इजाजत के बाद सिफारिश करें। और एट्थ पॉइंट है सूरह ज़ुमर 44। कुल लिल्लाहि शफ़ातु जमीयन लहुल मुल्कु समावाति वल अर्द सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कह दीजिए कि तमाम सिफारिश का मुख्तार अल्लाह ताला ही है, ज़मीन व आसमान की बादशाही उसी की है, फिर तुम सब उसकी तरफ पलटाए जाओगे। और नाइन्थ पॉइंट है सूरत तौहा 109 109। यौम इज़िल्ला तन्फ़उ शफ़ातु इल्ला मन अज़िन लहु रहमानु व रदिय लहु कौला। क़यामत के रोज़ कोई सिफारिश फ़ायदा न देगी सिवाय इस शख्स की सिफारिश के जिसे रहमान ने इजाज़त दी हो और इस सिफारशी की बात अल्लाह को पसंद भी आए। और दसवां पॉइंट है सूरह सबा 23। वला तनफ़ौ शफ़ातु इंदहु इल्ला लिमन अज़िना लह। अल्लाह के हजूर कोई सिफारिश किसी को फायदा नहीं दे सकती सिवाय इसके जिसके लिए अल्लाह ताला ने इजाजत दी हो। और ग्यारहवा और आखिरी पॉइंट इसका नोट कीजिएगा, सूरत हूद 105। यौम याति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्नी। जब वो दिन आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी सिवाय अल्लाह ताला की इजाजत के, यानी जब अल्लाह दे। इन 11 आयतों का खुलासा एक ही निकला, सिफारिश सिर्फ उसकी होगी जिस के लिए अल्लाह चाहेगा। अब अगला सवाल लिखिए, कौन करेगा? ये हमारे कल्चर में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कौन किसकी करेगा? तो इसको ज़रा सा नोट कीजिए, बहुत ही खूबसूरत लिस्ट बनाने वाले हैं हम लोग कि शिफात की इजाजत किसको मिलेगी? नंबर एक, फरिश्तों को। क्यामत के रोज शिफात की इजाजत या तो फरिश्तों को मिलेगी या नबियों और रसूलों को, और फिर अहले ईमान में से बास नेक लोगों को। इसी तरह इंसान के बास नेक आमाल भी इसके हक में सिफारिश करेंगे। वन बाय वन करके इन चारों पंचों को देखते हैं। सबसे पहले अंबिया और रसूल की सिफारिश, इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। क्यामत का दिन असल में अंबिया और रसूलों का दिन है, जैसे कहते हैं ना मेमोरियल डे, नेपोलियन डे, कायदे आजम डे, फलां डे, दिन होते हैं ना, तो सेलिब्रिटीज ऑफ द डे ऑफ जजमेंट विल बी अंबिया और रसूल। कितनी इज्जत मिलेगी उनको, क्योंकि दुनिया में उनको उनका हक नहीं पूरा मिला, तो उनको इजाजत दी जाएगी। और उनमें सबसे बड़ी अजीम सिफारिश नबी सल्लम को मिलेगी। हदीस सुनिए, अबू सईद खुदरी से रिवायत है, आपने फरमाया, अना सैयदु वुल्दी आदम वला फखरा व अना अव्वलु मन तनशक्कुल अर्दु अनहु यौमल कियामती वला फखरा व अना अव्वलु शाफी वल अव्वलु मुशफ्फाइन वला फखरा वलिवा उल हमदी बियदैया यौमल कियामती वला फखरा। देखिए, आजजी भी और हकीकत बयान भी कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी, और मैं ये बात तकब्बुर से नहीं कह रहा बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिफारिश करूँगा, और सबसे पहले मेरी सिफारिश कबूल की जाएगी, और मैं ये बात तकब्बुर के लिए नहीं कह रहा। और क़यामत के रोज़ हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, और मैं तकब्बुर और गरूर से ये बात नहीं कह रहा। ज़ाहिर है कि अल्लाह के नबी ने अपनी खूबियाँ भी तो हमें बतानी थी ना, वो दीन का हिस्सा तो नहीं छुपाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आजजी के साथ कह रहे हैं कि मैं ये बात फ़ख्र के साथ नहीं कह रहा। ये इब्ने माजा की रिवायत 4308 थी। इसी तरह अबू हुरैरा से एक रिवायत इब्ने माजा में भी है, 4307। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली नबीयिन दावतुन मुस्तजाबतुन। हर नबी की एक ऐसी दुआ है जो ज़रूर कबूल होती है। हर नबी ने जल्दी की और इस दुआ को दुनिया में ही मांग लिया, जबकि मैंने अपनी दुआ क़यामत के रोज़ अपनी उम्मत की शिफात के लिए महफूज रखी है। मेरी ये सिफारिश हर उस शख्स को पहुँचेगी जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। अल्लाह हमें इसका हकदार बना दे। तो अम्बिया रसूल के बाद दूसरी किस्म नेक लोगों की शिफात, इसको समझिएगा। हमारे यहाँ शिर्क और अफरात और तफरीत अमूमन इसी में है। तो बस अहादीस से ये बात पता चलती है कि अम्बिया के अलावा अहले ईमान को भी शिफात की इजाज़त दी जाएगी। वो कौन? मसलन शहीद को अपने खानदान के 70 लोगों की सिफारिश की इजाज़त दी जाएगी। मकदाम बिन मादी कर्ब रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ शहीद के लिए 6 एजाज हैं। पहले तो अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। बेटों के लिए मांगे, खौफ आता है, देखिए मौत तो आनी है, शहादत की याद है। शोहरों के लिए सोचिए, अगर हमारे शोहर शहीद हो जाए अल्लाह के रास्ते में तो रोना धोना डाल देंगे। अभी ये 6 चीज़ें सुनकर तो नहीं रोएंगे आप, लिखिए। नंबर एक, पहले ही लम्हे इसकी मग़फ़रत फरमा दी जाती है, और इसको जन्नत में इसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। क्या खुशबख्ती है! ये तो ऐसे कि अंदर एयरपोर्ट पे गए, फ़ौरन चेक इन हो गया, कोई सवाल जवाब नहीं हुए। दूसरा उसको फ़ायदा होता है, इसे अजाब कब्र से महफूज कर दिया जाता है। और क्या चाहिए, ये कब्र के बयान में भी हदीस हमने नोट की थी। तीसरा, क़यामत के दिन की मुसीबतों और घबराहटों से वो मामून और महफूज कर दिया जाता है। डर तो इसी का ही है ना। और चौथा ये कि इसके सर पर इज्जत और वक़ार का ताज रखा जाता है, क्राउन ऑफ किरामा, ताजुल किरामा, जिसका एक ही याकूत, याकूत कहते हैं सुरख को, गार्नेट ब्राउन कलर का नाग होता है, जो एक ही याकूत दुनिया और इसमें जो कुछ है सबसे कीमती है। और पांचवा फायदा, गोरी गोरी बड़ी बड़ी आंखों वाली 72 हूरों से उसकी शादी कर दी जाती है। आप ना सोचें इसके बारे में, आपका मजा किरकिरा हो रहा है, कोई बात नहीं। छठा लीजिए, इसके 70 रिश्तेदारों के बारे में इसकी सिफारिश कबूल की जाती है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते कि इन्नी समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलू मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन यमूतु व यकूमु अला जनाजतिही अरबाउन रजुलन ला युश्रिकून बिल्लाहि शैयन इल्ला शफ्फअहुमुल्लाहु फीह। फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का बेटा फौत हो गया, उन्होंने अपने आज़ाद करदा गुलाम कुरैब से कहा, देखो लोग नमाज जनाजा के लिए जमा हो गए। कुरैब कहते हैं कि मैं बाहर निकला तो देखा लोग नमाज जनाजा के लिए जमा हो गए हैं, चुनाचे मैंने वापस आकर इन्हें बताया तो आपने पूछा, क्या तुम्हारे ख्याल में 40 आदमी जमा होंगे? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे, आप मैयत को बाहर निकालो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान मैयत के जनाजे पर 40 ऐसे आदमी नमाज जनाजा पढ़ें जिन्होंने किसी को अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराया हो, तो अल्लाह ताला इस मैयत के हक में इनकी सिफारिश कबूल फरमाता है। और जो हरम में फौत हो जाए, लाखों लोग उनका जनाजा पढ़ें और जुमे की नमाज के बाद पढ़ें और रमजान में को फौत हो, अल्लाह हमें ईमान के साथ मक्का मदीना में मौत देना और सुकून मौत देना। तो इन सारी बातों से क्या पता चला, खुलासा लीजिए कि नेक लोगों की शिफात और दुआ को मैयत के हक में अल्लाह कबूल फरमाते हैं। जो चले गए उनको भूला ना करें, बल्कि उनके लिए दुआएं करते रहा करें, और अल्लाह सुबहाना ताला जिसको फायदा दें जितना दें, लेकिन सब के पीछे अकीदा, आमनू वामिलु सालेहात। कोई खुद से नहीं फैसला कर सकता, ये पीछे से अल्लाह ताला ने देखा है। और हम वो हदीस पीछे पढ़ चुके हैं कि क्यामत के दिन 3 लोगों से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, शहीद, आलिम और सखी। और शहीद इन लोगों में शामिल है जिनसे 70 अफराद की शिफात अल्लाह उसको इजाजत देगा, लेकिन शर्त यह है कि वो बहादुरी के लिए नहीं, नामवरी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए लड़े। तीसरी कैटेगरी थी फरिश्तों की शिफात की। तो कुरान पाक की आयात से ये भी पता चलता है कि फरिश्तों की बहुत दुआएं, यहाँ आपको एक शौक दिलाने के लिए बता रही हूँ कि ईमान बिल गैब सीरीज में एक सब टॉपिक ईमान बिल मलाइका भी हम कर चुके हैं, खूबसूरत टॉपिक। बहुत कम जानते हैं हम फरिश्तों के बारे में, खासतौर पर जिब्राइल के बारे में तो हम बहुत ही कम जानते हैं। तो आप इसके लेक्चर्स भी ऑनलाइन से ज़रूर सुनिएगा। यहाँ चंद आयतें नोट कीजिए जो हमें इस बात की दलील दे रही हैं कि फरिश्तों की सिफारिश भी कबूल होगी। अम्बिया 28, वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तदा वहुम मिन खशयतिही मुशफ़िकून, और वो फरिश्ते किसी के लिए सिफारिश नहीं करते सिवाय इसके जिसके हक में अल्लाह ताला सिफारिश सुनना पसंद फरमाए। और इन फरिश्तों का अपना हाल ये है कि वो इसके डर से कांप रहे होंगे। दूसरा नजम 26, वकम में मलक इन फिस समावाती ला तुगनी शफाअतुहुम शैयन इल्ला मिन बाद या ज़न अल्लाह लिमन यशाउ व यरदा। और आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं लेकिन इनकी सिफारिश कुछ काम ना सकेगी जब तक अल्लाह ताला इन्हें किसी शख्स के हक में इजाजत न दें जिसकी सिफारिश अल्लाह सुनना चाहें और उसको पसंद करें। तो क्या पता चला, फरिश्ते भी शिफात करेंगे। और फोर्थ और लास्ट कैटेगरी क्या है, हमारे अपने नेक अमाल वो भी सिफारिश करेंगे। हदीस से पता चलता है, कुरान से पता चलता है, कुरान मजीद सिफारिश करेगा, रोज़ा सिफारिश करेगा। और इनकी सिफारिश कौन सी है, शाफ़ी व मुशफ़ा, यानी जिनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो क्या पता चला कि आपका मेरा ये सारा मामला सुनना करना पढ़ना हमें क्या बता रहा है, कि दुनिया में ऐसे बन जाओ कि तुम्हारी सिफारिश हो। सबसे अहम और लास्ट के टॉपिक में से एक टॉपिक, शिफात का फायदा किसको होगा? देखिए ना, कई दफा लोग कहते हैं ना, बात करके गंवा दी, फायदा तो हुआ नहीं। कोई सिफारिश कर रहा है कि नहीं कर रहा आपके लिए, उसको साइड पे कर दें, सवाल ये है कि सिफारिश फायदा किसको देगी? टॉपिक समझ आ रहा है? किसको फायदा देगी, उसकी क्या कंडीशन है? इस पे हदीस नोट कीजिए, हजरत अबू हुरैरा रावी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, असअदुन नास बिशफाअती यौमल कियामती मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिस मिन कल्बिही औ नफ्सिही। क्यामत के रोज मेरी शिफात से फैजयाब होने वाले खुश नसीब लोग वो हैं जिन्होंने खलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया। ये बुखारी की रिवायत है। यानी सबसे ज्यादा फायदा उसको होगी होगा जिसका कलमा सही होगा, ताल्लुक बिल्ला ठीक होगा। इसी तरह अबू हुरैरा से रिवायत, नबी सल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली नबीयन, हर नबी की एक दुआ जो जरूर कबूल होती है लेकिन वो उसने दुनिया में मांग ली। हाँ, नबी सल्लम ने ये दुआ क़यामत के रोज़ अपनी उम्मत की शिफात के लिए महफूज रखी, लेकिन ये सिफारिश सिर्फ उसको मिलेगी जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। तो यहाँ से आप देखिए कि इज्तमाही दुआएं और इज्तमाही चीज़ों में वैसे बेनमाजी और कबीरा गुनाहों वाले का हिस्सा निकल जाता है। तो अल्लाह के नबी की सिफारिश से फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो तौहीद के अकीदे पे हुआ, मरते वक्त में हालते शिरक में नहीं मरा, और अगर शिरक था तो फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह किसी और नबी को भी ऐसे शख्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी जो कुफर शिरक पे मरे, चाहे उसका कितना करीबी हो। मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुशरिक बाप की सिफारिश करते हैं लेकिन कबूल नहीं होती। अबू हुरैरा से वो रिवायत मौजूद है कि इब्राहिम क़यामत के रोज़ अपने बाप आज़र को इस हाल में देखेंगे कि उसके मुंह पर स्याही और गर्दो गुबार जमा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे, मैंने तुम्हें दुनिया में नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी ना करो? आज़र कहेगा, अच्छा आज मैं नहीं फिर आपकी नाफरमानी करता। फिर हज़रत इब्राहिम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे कि मेरे रब, तूने वादा किया था कि मुझे क़यामत के दिन रुसवा नहीं करेगा, और इससे ज़्यादा क्या रुसवाई होगी कि मेरा बाप तेरी रहमत से महरूम हो? फिर अल्लाह फरमाएगा कि मैंने जन्नत कुफार पर हराम कर दी, और अल्लाह ताला फरमाएगा, इब्राहिम ये आपके पाँव के नीचे क्या है? और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखेंगे तो गिलाज़त में लत पथ बिज्जू, उसे टांग से पकड़ कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह, ये बुखारी की रिवायत है, कैसे इनकार करें? आज लोग बड़े आराम से ऐसी चीज़ों का इनकार करके पीछे हो जाते हैं। तो लिहाजा उसको फ़ायदा नहीं होगा सिफारिश से जिसमें शिर्क होगा। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक मारूफ था, जब फौत हुआ तो इसका बेटा, वो पक्का मोमिन था, अब्दुल्ला ही नाम था, अब्दुल्ला बिन उबई कहले, मुखलिस सहाबी थे, अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे, अल्लाह के नबी मुझे अपनी कमीज दे दें। अब बड़ी आखिरी बात है, गौर से सुनिएगा, मुझे अपनी कमीज दे दीजिए ताकि मैं इसमें अपने बाप को कफनाऊं। मुझे पता है मेरा बाप गुनाहगार था लेकिन कलमा तो पढ़ता ही था ना। अब औलाद होने के नाते तो नहीं दिल चाहता ना बच्चों का कि माँ बाप जहन्नुम में जाए। इन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, अल्लाह के नबी ने कमीज दे दी। कहने लगे, अब अल्लाह के नबी जरा उनका नमाज़े जनाजा भी पढ़ा दें। अब जो ही पढ़ाने के लिए खड़े हुए, हज़रत उमर आ गए, अल्लाह के नबी आप क्या कर रहे हैं, इस मुनाफिक की नमाज पढ़ रहे हैं? कहा कि इसलिए कि अल्लाह ने आपको मना किया। का मना तो नहीं किया, क्योंकि उस वक्त वो आयत उतरी थी कि 70 बार भी करेंगे तो हम कबूल नहीं करेंगे। अभी वो नहीं आई थी आयत के ला तुसल्ली, तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं तो 70 से भी ज्यादा कहूंगा, यानी मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। दिल कैसा था अल्लाह के नबी का? हम होते कहते और बदले लो, इसे जरा और लो, इसने तो मुझे सताया ही बहुत है। और जब अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा के हटे तो फिर आयत उतर गई कि आज के बाद आप किसी मुशरिक या किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे और उसके लिए दुआ नहीं करेंगे। ये भी बुखारी की रिवायत है। और जहाँ लफ्ज़ बुखारी आ जाए ना, खामोश हो जाया करें, क्योंकि अगर हमने हदीसों के सिलसिले को मशकूक बना दिया, जो आज हो रहा है, कितना हर बात पे मसला उठाया जा रहा है, ये सही नहीं तो ये वो सही नहीं, जो सदियों से रिवायतें चल रही हैं, आज उसको उठा के हाथ से रख दिया जी, ये दीन में नहीं है। वजह पीछे फितना इनकारे हदीस है। मैंने खुद सुना है कुछ लोगों ने हदीस है, और छोड़ो जी कहानियां घड़ी हुई हैं, नाउज़ुबिल्ला। तो अल्लाह ताला हमें ईमान दे, सेहत आफियत दे। ऐसी बातें अब्दुल्ला बिन उबई की पढ़ने के बाद तो वाकई अपनी फिक्र पड़ती है, और आखिर में बस एक गलत फहमी और उसका इजाला, क्योंकि मिसकॉन्सेप्शन इस टॉपिक पे बहुत है। मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक से आपको काफ़ी क्ल्यूज मिले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब गलत फहमी बहुत मारूफ है, क्या चूंकि बास नेक लोगों को क्यामत के रोज़ शिफात की इजाज़त मिलेगी, इसलिए हमारे यहाँ बास लोग नेक बुजुर्गों के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि ये ज़रूर हमें जन्नत में ले जाएंगे, चाहे हम कोई नेक अमल करें या ना करें। आप क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को ले जाएंगे वो नेक कर जन्नत में? आप जहाज में लेके जा सकते हैं अपनी सहेली को जिसने टिकट नहीं लिया? किसी कॉलेज में जाके बैठ सकते हैं क्लासरूम में? कोई बात नहीं जी। तो ये जहालत है। अव्वल तो किसी के बारे में ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो खुद भी जन्नती है कि नहीं, सिवाय उनके जिनके लिए अल्लाह के नबी ने बशारत दे दी। दूसरी दलील, किसी बुजुर्ग और वली को ये इजाजत नहीं कि जिसकी चाहें अल्लाह के यहाँ सिफारिश करें, हाँ वो करेंगे भी तो अल्लाह के हुक्म से करेंगे, और अल्लाह कभी किसी ऐसे शख्स की इजाजत नहीं देगा सिफारिश करने की जो शिर्क और कुफर के अकीदे पे मरा हो। इसी तरह बहुत से लोग शिफात के हसूल के लिए बस ऐसे काम कर जाते हैं जो या तो शिर्क किया होते हैं या शिर्क का दरवाज़ा खोलते हैं। मसलन अब चंद नाम जो माशरे को सामने रखकर बोल देती हो, किसी बुजुर्ग के नाम की नजरो न्याज, कुर्बानी, उसकी कब्र पे चिरागा और चढ़ावा, और पास बुजुर्गों के बारे में ये गुमान करना कि वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं जिस तरह मरने से पहले थे, और वैसे ही हमारी सुनते और देखते हैं और हमारी मदद पे कादिर हैं जैसे जिंदगी में थे। अब होता क्या है, एक तरफ ये अकीदा दिल में रखा, दूसरी तरफ अपनी तकलीफों बीमारियों मुश्किलात में अल्लाह को बुला पुकारने की बजाय इन बुजुर्गों को पुकारने लगते हैं, उनसे फरियादे करते हैं। तो ये अकीदे तौहीद की जिद है, इनके मुनाफी है। और साथ ही क्या कहते हैं, साड़ी सुंदा नहीं है ना दी मोड़दा नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह खुद को क्या कह रहे हैं वैसे, असमी, और अल की वजह से सब की सुनने वाला, और सामे नहीं समी फाइल का वजन, और लोग कहते हैं जी हमारी तो अल्लाह सुनता ही नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह। तो ये सोचना कि अल्लाह ताला इनकी जरूर सुनता है, ये नहीं वो नहीं, ये सब बातिल बातें हैं। अल्लाह ताला आफियत रखे। जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन व जालना लिल्मुत्तकीना इमामा। अल्लाह ताला आप सब के बच्चों को आंखों की ठंडक बनाए, शौहर बीवी बच्चे सब मिलकर दुनिया में हंसी खुशी भी रहें और अल्लाह के दीन को भी फैलाएं, और जो बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे आफियत दे, अल्लाह इन कामों में बरकत दे और हर मामले को अपने हाथ में ले लें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।